हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 28। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। पहला स्कंद छठा अध्याय जिसका शीर्षक है नारद तथा व्यास देव का संवाद, श्लोक नंबर 28। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नारद मुनि कहते हैं, प्रयुज्यमाने मयिता शुद्धा भागवतीं तनु आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। प्रयुज्यमाने मयिता शुद्ध अथाम भागवतीं तनुं प्रारब्ध कर्म निर्वाणं न्यपतत् पांच भौतिकः प्रयुज्यमाने मैतां शुद्धां भागवतीं तनुं प्रारब्ध कर्म निर्वाणं न्यपतत् पांच भौतिकः प्रयुज्यमाने मैतां शुद्धां भागवतीं तनुं आरब्ध कर्म निर्वाणं न्यपतत् पांच भौतिकः प्रयुज्यमाने मैतां शुद्धां भागवतीं तनुं आरब्ध कर्म निर्वाणं न्यपतत् पांच भौतिकः प्रयुज्यमाने मैतां शुद्धां भागवतीं तनुं आरब्ध कर्म निर्वाणं न्यपतत् पांच भौतिकः। शब्दों का अर्थ, प्रयुज्यमाने पुरस्कृत होकर मई मुझ पर ताम उस शुद्धाम दिव्य भागवतीम भगवान की संगति करने योग्य तनुम शरीर आरब्ध प्राप्त किया कर्म सत्काम कर्म निर्वाणम समाप्त होना न्यपतत त्याग दिया पांच भौतिक अर्थात पांच तत्वों से बना हुआ शरीर। अनुवाद, भगवान के पार्षद के अनुरूप दिव्य शरीर पाकर मैंने पांच भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय हो। शीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान ने यह बता दिया कि नारद को उनकी संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा, अतः नारद ने ज्यों ही भौतिक शरीर त्यागा उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और तीन दिव्य गुणों से युक्त होता है। ये हैं शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्त तथा सकाम कर्मों के फलों से मुक्ति। भौतिक शरीर निरंतर इन तीनों गुणों के अभाव से पीड़ित रहता है, किंतु ज्यों ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। यह लोहे पर चुंबक जैसा प्रभाव डालता है। दिव्य भक्ति का प्रभाव भी वैसा ही है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रामाणिक गोस्वामियों का यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्र गोप कीट से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के अधीन हैं और उन्हें अपने कर्मों के फल का भोग करना होता है, लेकिन केवल भक्ति ही भगवान की अहितु की कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त हैं। शिलप्रभुपाद की जय हो। मोकं कुरु तु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन्दीनतारणम्। आज नारद मुनि मृत्यु के बाद क्या हुआ और कैसे उन्होंने यह भौतिक शरीर को त्यागने के बाद क्या अनुभव किया उसके विषय में बता रहे हैं। जैसे कि श्लोक नंबर 27 में उन्होंने कहा, एवं कृष्ण मतिर्ब्रह्मन् असक्तस्य मलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले तड़ित सौदामनी यथा। कि इस तरह जब समय बीत गया और उन्होंने भगवान के चिंतन में सदैव मग्न रहते थे और किसी प्रकार की भौतिक आसक्ति नहीं रखते थे, समस्त भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त हो जाने पर जब मृत्यु हुई तो इस प्रकार जैसे बिजली के साथ चमक भी होती है, उसी प्रकार मृत्यु के साथ साथ उनका भौतिक शरीर परिवर्तित हो गया। और उनका भौतिक शरीर किस तरह परिवर्तित हो गया वो आज के श्लोक में बता रहे हैं। प्रयुज्य माने मई ताम शुद्धाम भागवतीन तनु। के इस तरह से जब भगवान के गुणानुवाद करने करते करते भगवान ने उन्हें पुरस्कृत कर दिया, यानी भगवान ने उन्हें क्या प्रदान किया, शुद्धाम भागवतीन तनु, कि जो भौतिक शरीर था उसका परित्याग करने के बाद उन्हें भागवती तनु प्राप्त हुआ। वास्तव में यही भागवती तनु प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करें। और हमारा वास्तविक स्वरूप जब हम प्राप्त करेंगे उसी के लिए ये जो सब हम कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन करना, भगवान के पवित्र नाम में जप में प्रीति लगाना, भगवत सेवा करना, ये सब इसीलिए है कि हम बहुत दूर हैं, भौतिक कलमश में आकर गिर गए हैं। ये हमारी रहने की वास्तविक स्थिति नहीं है। हम यहाँ पर कष्ट इसीलिए भुगत रहे हैं क्योंकि ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, हमारा वास्तविक ये स्वभाव नहीं है जीव का। जीव का वास्तविक स्वभाव है प्रेम, केवल प्रेम, और वो भी क्योंकि जीव शाश्वत है तो प्रेम केवल शाश्वत वस्तु से जब वो करता है तभी उसे आनंद प्राप्त हो सकता है। तो जब एक भक्त एक जीव जो है वो एक शुद्ध भक्त का आश्रय लेता है और उनके चरण चरणों का आश्रय लेने के बाद जब वो शुद्ध हो जाता है, भगवान की भगवान का नाम भगवान की कथाओं को श्रवण करता है और उस शुद्ध भक्त का जब उसे सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो फिर वो अपने वास्तविक स्वरूप को बहुत सरलता से प्राप्त कर सकता है। वैसे तो ये बहुत कठिन है, यानी कि जो वो ऋषि लोग अनेक सालों तक तपस्या करते हैं, इतने कष्टदायक दूसरे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, भगवत प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है, परंतु यदि कोई शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाए, श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, आपको चार नियम का पालन करना है, 16 माला जप करना है और भगवत सेवा करना है, विग्रह सेवा करना है, और आप भगवत धाम तुम्हारा जाना पक्का है, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर तुम चार नियम का पालन करोगे, 16 माला जप करोगे, 10 नाम अपराध से बचकर भगवान की सेवा करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे लिए भगवत धाम पक्का है। तो कुछ लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, ऐसे कैसे पक्का है, कितने लोग तो कितने ऋषि मुनि मर रहे हैं, करोड़ करोड़ साल के लिए तपस्या करते हैं, कितना मुश्किल से है ना भगवत प्राप्ति होती है और आप इतना सरल बता रहे हो, ईटिंग डांसिंग चेंटिंग एंड शास्त्र अध्ययन बुक रीडिंग आप ये बता रहे हो और इससे भगवान प्राप्त हो जाए, इतना सरल कैसे हो सकता है। परंतु ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ किसी मंदिर में बड़ा सा फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल के टाइम पर कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, एक के कुछ स्टैंडर्ड के लोग होंगे वही स्टेज पर आएंगे, है ना। स्टेज पर सिर्फ सारे साधारण लोग को नहीं आने दिया जाएगा, कुछ भक्त होंगे उनको कहा जाएगा बस आप ही अभिषेक करोगे, और कुछ भक्तों की ड्यूटी होगी कि भाई आपको श्रृंगार करना है, कुछ भक्तों की अलग अलग ड्यूटी बनाई जाती। लेकिन वहां का अगर कोई मुख्य व्यक्ति होता है वो अगर किसी को चाहे तो वो स्टेज पर बुलाकर कोई भी सेवा उसको दे सकता है ना, ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है अभिषेक के टाइम पर या विग्रह सेवा के लिए भी, जो बहुत है ना करीब के लोग होते हैं वो किसी को भी आकर बोल सकते भाई आप ये सेवा करो। तो फिर दूसरे कभी कभी ऐसा होता है मंदिरों में बड़ी बड़ी लाइन लगी होती है, जैसे आपने देखा होगा सिद्धि विनायक या शिरडी वगैरह में बहुत वो लाइन लगी होती है, तो किसी की बारी आती है 4 घंटे में 3 घंटे में, लेकिन उसी मंदिर का अगर कोई पुजारी किसी व्यक्ति को बोलता है कि भाई ठीक है आप इस रास्ते से आ जाओ मैं आपको यहाँ से लेकर जाता हूँ, फिर दूसरे लोग बल्ले चिल्लाते रहे बोलते रहे भाई हम तो 3 घंटे से खड़े, लेकिन अब क्योंकि उस साधारण व्यक्ति को भी सानिध्य किसका प्राप्त है, इसी मेन व्यक्ति का प्राप्त है वो, तो फिर उसको लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मैं इसीलिए आया हूँ आप लोगों को सीधा डायरेक्टली पीछे के दरवाजे से लेकर जाने के लिए आया हूँ, लाइन में खड़ा करके मरवाने के लिए नहीं आया हूँ। ये शॉर्टकट वे है कि यदि किसी संत के पास हमारी पहचान हो जाए, कोई शुद्ध भक्त हमें जानने लगे, फिर भगवान के धाम जाना बहुत ही सरल हो जाएगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मैं जितना कहता हूँ बस उतना करो, मैं हूं ना गेट पर, मैं ही मिलूंगा आपको, ले जाऊंगा, अब क्यों चिंता करते हो। अगर किसी शुद्ध भक्त के साथ किसी वैष्णव के साथ पहचान हो जाएगी तो वो वहां पर हमारी है ना सिफारिश, हाँ जानता हूँ मैं इसको भेजो, ये हमारा अपना बंदा है इसको अंदर ले लो। लेकिन यदि कोई पहचान, अब देखो यहाँ संसार में भी कैसा होता है कि अगर आप किसी बड़ी ऑफिस में चले जाओ या किसी बड़ी जगह पे चले जाओ तो गेट कीपर आपको पहले क्या पूछेगा, भाई आपको किससे मिलना है, आप किसी को जानते हो, तो आप बोलोगे हाँ ठीक हाँ यहाँ पर है ना ये व्यक्ति है मैं उनसे मिलना आया हूँ या फिर उनसे मेरी पहचान है, तो फिर वो बोलेगा अच्छा वाकई में आप, तो बोला हाँ आप भले टेली करके देख लो मुझे बुलाया उसने, बोला आप यहाँ पर आओ, आप फोन करके देख लो, फिर वो फोन करेगा हाँ प्रभु आप इसको जानते हो, तो बोलेगा हाँ ठीक है लेकर आओ इसको मैं जानता हूँ। लेकिन अगर पहचान ही नहीं होगी तो आप भले कितने ही बड़े हो, कितने ही अमीर आदमियों को आपका कोई पहचान वाला नहीं है उस वहां पर, तो उसको आपको एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। उसी तरह वैकुंठ में भी जय और विजय ने चार कुमार को भी रोक दिया, है ना, कि आप बताओ किसी कोई बात है, पहले बुलाया किसी ने, अपनी मर्जी से कैसे जा सकते हो। तो अगर किसी की हमारे साथ पहचान हो जाए तो फिर अंदर जाना बहुत सरल हो जाएगा। अब ये तो यहाँ भौतिक जगत का भी रूल होता है, तो वहां पर कैसे हम बगैर किसी जान पहचान के जा सकते हैं। किसी शुद्ध भक्त से पहचान हो जाए ना तो आध्यात्मिक जगत में एंट्री मिल जाएगी, बहुत सरलता से हम जाएंगे। और ऐसा है दूसरा ये कि ये भक्ति का भक्तों के संग और भक्तों का सानिध्य का जो रास्ता है ना वो लिफ्ट की तरह है, वो फटाफट से आपको आपका कनेक्शन जोड़ता है। लेकिन जो बाकी जो रास्ते होते हैं, बाकी जो तरीके हैं भगवत प्राप्ति के, वो बहुत बड़ी जैसे सीढ़ियों से आपको अगर 84 फ्लोर की उस बिल्डिंग में जाना हो और सीढ़ियों के साथ जाओगे तो जाते 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 मर जाओगे। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे एक सेठ था, बहुत अब देखा उसका फ्लोर भी था 84 फ्लोर पर उसका है ना घर था, घर आया देखा लिफ्ट खराब थी, अरे बाप रे लिफ्ट खराब है तो क्या करूं। तो बोला कि अब मैं क्या करता हूँ, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। उससे पूछा लिफ्ट सही करने वाले आए थे, बोला 2 दिन लगेंगे, बोले 2 दिन तो जाहिर सी बात है मैं नीचे नहीं खड़ा रहूंगा, आहिस्ता आहिस्ता करके जाता हूँ। तो नीचे वॉचमैन को गाड़ी नीचे ही पार्क की और फिर उधर ही उनका वॉचमैन खड़ा था, तो बोला ऐसा करो ये कोट मेरा यहीं पर रखो, अभी मैं इतना ऊपर चढ़ूंगा ये कोट यहीं पर रख के जाता हूँ, मैं ना खुद जा रहा हूँ क्योंकि इतना वजन कैसे लेके जाऊँ। फिर ऊपर चढ़ा, बहुत बहुत आगे आगे चलता रहा। हाँ उसका साथ उसका दोस्त भी था, दो दोस्त थे मतलब एक साथ ही ऑफिस जाते थे, तो उन्होंने अपने
चार्ल्स वो जो कोट वगैरह था ना वो नीचे ही रखा और ऊपर से चला चले गए। रास्ते में बोला कि अब इतना बड़ा सफर है कैसे चलेंगे, दोनों आपस में बातें कर रहे हो, तो बोला ऐसा करो तो मुझे स्टोरी सुनाओ। तो वो स्टोरी सुना रहे थे, जोक सुना रहे थे, आहिस्ता 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 करके सफर तय हो रहा था। पहले 10 फ्लोर हो गए, फिर 20 फ्लोर हो गए, फिर 30 फ्लोर हो गए, इस तरह करते करते 80 फ्लोर भी हो गए। अब 4 फ्लोर रह गए थे, बहुत खुश थे कि हम पहुंच गए, एटलीस्ट घर पे पहुंचने वाले हैं। और 4 फ्लोर और भी चढ़ गए, अपना फ्लोर आया और देखा, अब चाबी निकालू क्योंकि घर में सिर्फ वही रहते थे। चाबी निकाला, निकालने के लिए हाथ डाल रहे थे परंतु कोट तो था ही नहीं, कोट तो नीचे उतार के आ गए थे, अब ताला कैसे खोलें। उसी तरह से अगर प्रेम नहीं है भगवान के साथ, भगवान के शब्द का, ये जो हमारे पास जो माला है ना, ये जो हम माला जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वास्तव में भगवान के धाम के डोरबेल है। डोरबेल जिस तरह डोरबेल हम बजाएंगे ना, तो अब उस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जब बजाते रहेंगे तो कोई ना कोई जरूर खोलेगा, कोई ना कोई आएगा, या तो श्रीमती जी आएंगी, या भगवान आएंगे, या किसी सखा को भेजेंगे, जान देखो कौन दरवाजा खटखटा रहा है, कब से डोरबेल बजा रहा है, तो कोई ना कोई खोलने जरूर आएगा। लेकिन यदि हम उस माला को या डोरबेल को अपने साथ नहीं रखेंगे और दबाएंगे नहीं उसको, तो हम कभी भी किधर भी हो ना, हमारे साथ माला जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई है ना वो नहीं भरोसा, कहीं पर भी आ जाए तो हम लोग माला ये डोरबेल बजाते रहें बजाते रहें बजाते रहें, और उससे वो दरवाजा खुल जाए और हमें भगवान के धाम में एंट्री मिल जाए। तो गुरु जिस दिन हमको यह माला देते हैं, जिस दिन हमारी दीक्षा होती है और गुरु महाराज हमें ये माला देते हैं, उसी दिन क्या होता है, हमारा शरीर जो है, यहाँ पर देखो भाग, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, प्रयोज्या पाने मई तम शुद्धम भागवतीम तनुम, कि मैंने शुद्ध भागवत तनो प्राप्त किया। इसका मतलब श्रील प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ तात्पर्य में, जो सेकेंड वाला पेज है ना उसका शुरू से देखो आप लोग, किंतु यूं ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको मरना पड़ेगा दिव्य शरीर प्राप्त करने के लिए, भक्त का शरीर उसी समय दिव्य हो जाता है जब वो भगवान की सेवा के लिए खुद को तत्पर करता है। क्योंकि जब भक्त दीक्षा लेता है उस समय वह शरीर जो है वो अपना सारा सब कुछ तन मन धन अपने गुरु को समर्पित कर देता है और ये वचन देता है कि अब मैं केवल गुरु आज्ञा के अनुसार ही जीवन व्यतीत करूंगा। फिर अधिकार नहीं रह जाता हमारे अपने किसी भी संपत्ति पर, अपने धन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता। यही किया सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु के पास आए थे, तो क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से महाप्रभु के पास पहुंचे थे, झारखंड के जंगलों से होते हुए उसने बहुत कष्ट देखा था, क्योंकि नवाब हुसैन शाह के राज्य से भाग कर वो आए थे और रास्ता सीधा वाला रास्ता नहीं लिया था, क्योंकि सीधे रास्ते से तो फिर नवाब के सिपाही आते उसे वापस ले जाते, लेकिन वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे। अब जंगल के रास्ते से जब जा रहे थे तो वहां पर उन्हें अच्छा खाने के लिए नहीं मिला, गंदा पानी मिला था और वो गंदा खाना और पानी ये पीकर उनके शरीर पे ना खारिश हो गई थी, बहुत रस्सा निकलने लगा था, जख्म हो गए थे। और जब आए हरिदास ठाकुर महाराज के यहाँ पर बैठे और वो दिली दिल में यही सोच रहे थे कि महाप्रभु से मिलूंगा, महाप्रभु मुझे स्पर्श करेंगे, मेरा शरीर तो कितना गंदा है, इससे अच्छा है कि मैं जगन्नाथ का जो रथ होगा ना उसके पहिए के नीचे आकर जान दे दूंगा, मुझे मर जाना चाहिए, ऐसा मेरा शरीर है। और महाप्रभु जब फिर मिलते थे उनसे तो उनको स्पर्श करते थे, उनको आलिंगन करते थे, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, तो मैं मर जाऊं इससे बेहतर है, क्योंकि महाप्रभु का शरीर इतना कोमल और मैं इतना गंदा, मुझे महाप्रभु स्पर्श करते हैं। तो फिर महाप्रभु ने आके बोला, सनातन तुम चोर हो। सनातन ने कहा, महाप्रभु क्या चुराया मैंने? तो बोले,
ये शरीर तुम्हारा नहीं है सनातन, तुमने जिस दिन मेरी शरण ग्रहण की थी तो तुमने ये नहीं कहा मेरा सब कुछ तुम्हारा है महाप्रभु, तो तुमने ये सोचा कैसे कि तुम अपने इस शरीर को अपनी मर्जी से नष्ट कर सकते हो, तुमने ये अच्छा नहीं किया सनातन। तब महाप्रभु हमें बताना चाह रहे हैं कि जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं, तो हमारे शरीर पर हमारा अधिकार नहीं रह जाता कि हम जब दिल चाहे जागे, जब दिल चाहे सोएं, जब दिल चाहे खाएं, जो दिल चाहे खाएं, वो फिर हमें अपना शरीर, अपना मन, अपना वाणी, अपना धन सब कुछ गुरु की प्रसन्नता के लिए यूज करना पड़ता है। यही तो गुरु दक्षिणा है हमारी। वैसे इस संसार में हम कोई भौतिक एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके लिए भी हमें दक्षिणा देनी होती है ना। आध्यात्मिक जगत की एजुकेशन हासिल करने के लिए भी दक्षिणा देनी होती है, और भौतिक जगत की एजुकेशन से हमें भौतिक डिग्रीज मिलती हैं, भौतिक जो भी प्राप्त होता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर बनते हैं, कुछ भी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में यदि हम अच्छे किसी अच्छे शुद्ध बोनोफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को प्राप्त करते हैं तो ये मिलता है जो नारद मुनि को मिला, शुद्धाम भागवतीम तनुम, कि ऐसा तन जिसको, तनुम का मतलब होता है शरीर, ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो भागवतीम होता है, यानी भगवान की संगति करने योग्य। आज जो हमारा शरीर है वो भौतिक पंचभूत से मिलकर बना हुआ है, जैसे आगे बता रहे हैं ना, पांच भौतिक, ये जो पांच भौतिक का जो शरीर है, न्यापतत, न्यापतत मतलब वो त्याग दिया, वो त्याग दिया मतलब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये वाला जो भौतिक शरीर है ना, जब भक्त की सानिध्य को प्राप्त करता है उसी समय से वो दिव्य हो जाता है, दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। यह लोह पर चुंबक जैसा प्रभाव डालता है, लोह पर चुंबक मतलब जैसे अगर कोई लोहे की प्लेट हो, ठीक है, उस पर एक साइड पे हम चुंबक लगा देते हैं, चुंबक होता है ना मैग्नेट, बड़ा सा चुंबक लगाएंगे तो फिर वो लोहा जो है अब किसी भी वस्तु को, कोई भी जो दूसरा लोहा होगा उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, हालांकि वो लोहा ही है ना, वो चुंबक तो नहीं है, लेकिन फिर अगर उस लोहे पर भी कुछ चिपकाएंगे ना लोहे का, तो वो चिपक जाएगा, उसके अंदर दिव्य गुण आ जाएंगे। उसी तरह से जब हमारा यह भौतिक शरीर के द्वारा हम भगवान की सेवा उससे करते हैं, शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, तो फिर हमारा ये भौतिक शरीर भी दिव्य बन जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त भक्त पर प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति, यानी भौतिक के जो गुण होते हैं प्रकृति के, भौतिक आसक्ति हो जाती है, वो सब समाप्त हो जाता है। और ऐसा बताए श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। गुरु महाराज क्या वो मर गए थे फिर भगवान उनको प्राप्त हुए थे? नहीं ना, उनका वही शरीर था लेकिन वह शरीर दिव्य बन गया था, भगवान की संगति के योग। भागवतीम तनु का मतलब होता है ऐसा शरीर प्राप्त हो गया जिससे आप भगवान के दर्शन कर सकते हो, भगवान को श्रवण कर सकते हो। प्रहलाद महाराज तथा अन्य भी अनेक ऐसे भक्त हैं जिनका शरीर भगवान का साक्षात्कार कर सके शरीर के साथ। वास्तव में भक्तों, नारद मुनि ने भगवान के दर्शन भी किए और भगवान की वाणी भी श्रवण की, अर्थात यह भौतिक शरीर ही इस योग्य हो गया कि वो भगवान की संगति कर सका। इस चीज को बहुत ही सुंदर रीति से बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में। वे कहते हैं श्लोक नंबर 6 में, दृष्टे हि स्वभाव जनित वपुषस्य दोषः न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्यत्, कि अगर कोई प्राकृतिक दोष भी होता है ना भक्तों के शरीर में, तो भी उसको दोष को हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो जो भक्त होता है वो अपने आप को भौतिक शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को हमें भौतिकतावादी दृष्टिकोण से देखना ही नहीं चाहिए। निसंदेह भक्त के जो निम्न कुल में उत्पन्न होना या उसके कुरूप चेहरा, उनके अंदर कोई देखने में ऐसा लगे कि उनके अंदर उनका कलर किसी का काला होता है, किसी का इस तरह से, ये जो
अवगुण होते हैं ना वो भौतिक शरीर के होते हैं, या किसी के बात करने का तरीका ऐसा होता है, किसी की आंखें ऐसी होती हैं, लेकिन भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वो भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण कर चुका है और वो अब इस योग्य हो गया है कि हमें भी भगवान की प्राप्ति करने में सहायक बन सकता है। तो साधारण दृष्टि से अगर किसी भक्त के अंदर कोई दोष होता है, उसका शरीर रोगी होता है, विकृत होता है, या कुछ ऐसा जो हम साधारण दृष्टि से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद भी शुद्ध भक्त का शरीर कभी भी दूषित नहीं हो सकता है। ये कैसे है, गंगाम बसाम न खलु, जिस प्रकार गंगा जल वो बिल्कुल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, परंतु जब बारिश होती है या तो फिर क्या होता है, गंगा का पानी मटियाला हो जाता है, बुद बुद फैन पंख है उनके अंदर, बुद बुद आ जाते हैं और फैन आ जाती है, तो लेकिन कभी भी ब्रह्मा द्रवत्वम अपगच्छति नीर धर्म, लेकिन फिर भी जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना ही गंगा में स्नान करते, ये नहीं सोचते कि आज गंगा का पानी मटियाला लग रहा है या इसमें अंदर बहुत बुदबुद है, फेन है, तो हम उसको नहीं उसको स्वीकार करेंगे, उसमें स्नान नहीं करेंगे। उसी तरह शुद्ध भक्त के अंदर अगर हमें भौतिक दृष्टि से कोई ऐसी बात दिखती है तो फिर भी वो पवित्र होता है, उसके अंदर कोई भी अवगुण नहीं होता है, क्योंकि वो दिव्य शरीर में स्थित हो गया है। आगे नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि कहा, आरब्ध कर्मणो आरब्ध कर्म निर्वाणो, यानी कि जो भी सकाम कर्मों के जितने भी फल मैंने अर्जित किए थे, यानी कि जो भी कर्म की श्रृंखला, एक जो जंजीर थी वो टूट गई, अब कर्मों की जंजीर बाकी नहीं रही, कर्म के फल समाप्त हो गए। आरब्ध यानी प्राप्त किए, कर्मणाम सत्काम कर्म निर्वाणम समाप्त हो गए। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने इसके विषय में बहुत ही सुंदर बात बताई है, ब्रह्म संहिता का श्लोक नंबर 54 है, जिसमें बताया गया, यस्विंद्र गोप मथवेंद्र महोस्व कर्मा, यस्विंद्र गोप मथवेंद्र, यहाँ पर दो बार इंद्र आया है, ठीक है, एक क्या है यस्विंद्र, एक इंद्र गोप है, इंद्र गोप एक कीड़ा होता है, उसका नाम है, जैसे बारिश में कीड़े निकलते हैं ना, जो एक दिन में आते हैं और उसी दिन मर जाते हैं, उसको शास्त्र में संस्कृत में कहा जाता है इंद्र गोप, और दूसरा क्या लिखा, यस्विंद्र गोप अथवा इंद्र महोस्व कर्म, इंद्र यानी स्वर्ग का राजा इंद्र। अब इन दो अलग अलग योनियों को यहाँ पर बताया जाता है, एक तो स्वर्ग के राजा की योनि है, जो इस भौतिक जगत में सबसे हाईएस्ट है, और इस भौतिक जगत में सबसे निचली इंद्र गोप जो कीड़ा होता है, तो भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं, यस्तु इंद्र गोप मथवेंद्र महोस्व कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनो, जितने भी लोग हैं स्वर्ग के राजा से लेकर एक क्षुद्र कीड़े तक, जितने भी हैं समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप ही फल भोग होता है, यानी कि वो जो जो कार्य करता है उन्हें उसका फल भोगना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि देवता बन गए तो अपने कर्मों का फल तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा, जो भी, अब देवताओं में अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, कोई राजा है तो कोई उनके नौकर है, तो उनको अपने हिसाब से कार्य करना पड़ता है, परंतु कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजन, लेकिन फिर भी जो कर्माणि निर्दहति, कर्माणि का मतलब होता है जितने भी भौतिक कर्मों के फल हैं, निर्दहति यानी कि वो नाश हो जाते हैं, किन कैसे नाश हो जाते हैं, भक्ति भाजन, यानी अगर कोई भगवान की भक्ति में लगता है, किसी को शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हो जाता है और वो उसको भगवान की भक्ति में लगा देता है, तो उसके समस्त कर्मों के फल निर्दहति नाश हो जाते हैं। भगवान भी कहते हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, तुम आओ तो सही मेरी शरण में, मैं तुम्हारे समस्त अपराधों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें माशुचत, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितने अपराध किए हैं, अपिचे सुदुराचारो, अगर तुमने बहुत करोड़ों करोड़ अपराध किए होंगे, चिल्लाते मर गए हमके दूत,
कि इसको ले जाएंगे, ये तो पापी है, ये अजामिल को लेने के लिए आए हैं, इसने अपने जीवन में कोई पवित्र कार्य किया नहीं है। विष्णु दूत ने क्या बोला, नहीं ये पापी नहीं है, तुम लोग पापी हो। तो विष्णु दूत वो जो यम के दूत थे वो कहने लगे, हम कैसे पापी हैं, हमने तो कोई पाप नहीं किया, हम तो अपना कर्तव्य करने आए, इसको उठाने आए, क्योंकि ये अपवित्र आत्मा है। तो विष्णु दूत बोले, नहीं तुम लोग पापी हो, क्योंकि तुम इस शुद्ध आत्मा को परेशान करो। ये शुद्ध आत्मा है, दिखाया उसका रिकॉर्ड पूरा, देखो बोला, लिस्ट पूरा दिखाया कंप्यूटर से, उसको प्रिंट करा के आए थे और बोला कि देखो इसने अपने जीवन में कितने अपराध किए हैं, चेक करो पूरा, हम संस्कृत में लिखा हुआ है हमारे, ये जो यम है उसने दिया है कि जाओ देख के आओ इसके, जिसके जितने अपराध होते हैं हम लोग पहले से लिख लेते हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी ना किसी को लेकर जाते हैं। तो बोला हाँ ये अपराध किए थे, पर जब इसने भगवान के पवित्र नाम का जप किया तो वो सारे अपराध नष्ट हो गए, अब बहुत पवित्र है, अब खबरदार जो उसको हाथ लगाया। तो विष्णु दूतों ने सारा जो लेकर आए थे वो उसका काला चिट्ठा वो सब फाड़ के फेंक दिया, बोला अब इनकी आवश्यक, अब ये सब का अपराधों में से फल नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसने भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर दिया है, ऐसे शुद्ध नाम के उच्चारण से उसका अस्तित्व शुद्ध हो गया। केवल शब्द का प्रभाव है, प्रभुपाद जी कहते हैं हो सकता है हमारे सामने कृष्ण ना हो, परंतु उनके पवित्र नाम का, उनके शब्दों का प्रभाव उनके दर्शन से ज्यादा अधिक है। जैसे हालांकि दर्शन में और भगवान के शब्दों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर संसार में भी यदि हम देखते हैं, अगर किसी बड़े राष्ट्रपति को या किसी बड़े व्यक्ति को दूर से देखा तो देखना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर उसने आपको भले देखा आपने उसको नहीं हो, लेकिन उसने आपको बोला हो, कोई बात कही हो, फोन पे कही हो या किसी के द्वारा कही हो, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप किसी के बहुत बड़ा जैसे व्यक्ति है उसके घर पे जाओगे, बोले हाँ मैंने इसको देखा है इसलिए मैं उनके घर पे आया हूँ, तो बोले देखा है तो क्या हुआ, इनको तो करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्यों, आप तब आ सकते हो जब वो आपको बुलाए। तो अगर आपने उसको देखा नहीं होगा लेकिन फिर भी आप बोलो हाँ इन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था या इस व्यक्ति को बोला था कि आप आ जाओ हमारे घर पे, तो आप भले पूछ लो उनसे, मुझे उन्होंने खुद राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया है घर पे, तो वो जाके टैली करेगा कि हाँ ठीक है आपको बुलाया है। तो आप भले आपने उनको कभी देखा नहीं है लेकिन शब्दों का प्रभाव जो है वो अधिक होता है। हालांकि भगवान के दर्शन में भगवान की बात में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी शब्दों का एक जो शुद्ध वैष्णव को जो भगवान संसार में भेजते हैं तो आके बोलते हैं कि मैं जो भी भगवान है अर्थात कृष्ण, उन्होंने जो संदेश दिया होता है वो आके शुद्ध भक्ति यहाँ पर संसार में हमें बताते हैं कि अगर आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करोगे तो भगवान के धाम में जाना सुनिश्चित है। तो फिर हम जब वही करेंगे तो जाके बोलेंगे भाई हाँ ये मुझे उसके द्वारा उन्होंने कहा था, जाओ टेली करके देख लो, श्री प्रभुपाद जी ने हमें बोला 16 माला जप करो और है ना नियम का पालन करो, 4 नियम का पालन करो, 16 माला जप करो और 10 नाम अपराध से बचो, मैंने ऐसे किया था, अभी मुझे एंट्री दे दो। तो जाके बोलेंगे हाँ श्री प्रभुपाद जी हाँ इसको मैंने बोला था, ये अपना ही आदमी है, लेकर आ अंदर इसको। और भक्तों इस नारद मुनि के प्रसंग से सबसे ज्यादा जो हमें बहुत आश्वासनीय बात लगती है वो क्या है, जो उन्होंने 23 में बताया, सत्सेवया धीर गयापि जाता मैं निहामति, कि यदि कुछ काल के लिए भी परम सत्य की सेवा कर लेते हैं तो भक्ति दृढ़ हो जाती है और बुद्धि जो है वो भगवान में स्थिर हो जाती है। और जब शुद्ध भक्तों का, शुद्ध वैष्णवों का सानिध्य प्राप्त होता है तो बुद्धि भगवान में स्थित हो ही जाती है। तो ये बहुत ही हमारे लिए है ना आश्वासनीय बात है कि उसके लिए हमें ज्यादा जन्म तक या ज्यादा लंबे समय तक करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा टाइम भी अगर हम शुद्ध भक्तों का संग हमें प्राप्त होता है तो हमें भगवान में रुचि उत्पन्न हो जाती है। शुद्ध भक्त हमसे कुछ नहीं मांगते, वो केवल यही मांगते हैं, आप किसी शुद्ध भक्त से मिलोगे ना उसकी पहचान ये है कि वो आपसे केवल यही कहेंगे कि आपको अपना जीवन सफल करना है। संसार में क्या है, हर कोई आपसे मिलता है अपनी स्वार्थ के लिए। आपसे तभी कोई बात करेगा जब आपका उससे कोई स्वार्थ पूरा हो रहा होगा उसका, है ना, आपसे कुछ मतलब होगा तभी। लेकिन भक्ति की यह निशानी है कि जब भक्त आपसे मिलेगा ना, तो आपसे केवल इसीलिए बात करेगा कि आपको भगवान की सेवा करनी है, आपको अपने जीवन को सफल करना। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो संतुष्टी होते हैं, वो अपनी भक्ति में इतना संतुष्ट होते हैं कि आपकी कोई वस्तु ग्रहण करने के लिए नहीं आते। संत का मतलब होता है जो सदैव देना चाहता है आपको, आपको इन कष्टों से मुक्ति देना चाहता है, आपको कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहता है, वो होता है। और उसके बिल्कुल उल्टा है यह संसार। यह संसार में हर कोई हमसे लेना चाहता है कि मैं कैसे इसे अपने मतलब के लिए यूज करूं। संसार में हर कोई आपको अपने मतलब, और दूसरा जो सत्सेव या अधीर गया, उसको जो संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए भी आपको समय नहीं लगेगा। वो जल्दी से संतुष्ट हो जाएं, आप उनको प्रणाम करोगे और उनको बस, उनको तो प्रणाम की भी आवश्यकता नहीं है, आप बस उनकी बात समझ लोगे कि हाँ ठीक है, मुझे भगवान अपने जीवन को कल्याण करने के लिए, आप अपने स्वार्थ के लिए भी कृष्ण नाम का जप करोगे ना, तो वो संतुष्ट हो जाएगा, खुश हो जाएगा, कितना अच्छा है ये। और फिर वही जिसने आपको नाम दिया वही आपसे प्रार्थना करेगा, अभी आप तो बहुत अच्छे शुद्ध भक्त हो गए हो, अभी मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मुझसे भक्ति नहीं होती, मैं इतना गिरा हुआ हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप तो कितने अच्छे हो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मतलब वो अपने से भी ज्यादा आपके बारे में और भी कहेगा कि आप इतने अच्छे शुद्ध भक्त हो। तो ये, और संसार में क्या होगा, आप किसी को कितना मरते मर जाओ उसकी खुशियों, उसको है ना संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर लो, जान एक कर दो, लेकिन फिर भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकोगे। और एक दिन नहीं कर पाए, 99% उसकी सारी विशेष पूरी करने के बाद 1% नहीं कर पाए ना, तो फिर क्या कहेगा, तुमने किया क्या मेरे लिए, कभी तो तुम मेरे लिए कुछ करते नहीं हो, सारा दिन मेरी से उल्टे सीधे अपने काम करते हो। मतलब इतना फर्क है इस भौतिक जगत की सेवा में और भक्तों की सेवा में। और इसी चीज को नारद मुनि बता रहे हैं, प्रयुज्य माने मई तम शुद्धम भागवती तनु, के जिस तरह से मैंने भगवान के भक्तों के आदेशों को पालन किया और अपने मन को भगवान के अंदर, भगवान के श्री चरणों में केंद्रित किया, तो शुद्धम भागवती तनु, मुझे शुद्ध भागवती तन जिसके साथ मैं भगवान के साथ संगति कर सकूं, ऐसा शरीर प्राप्त हुआ। आरब्ध कर्म निर्वाण, जितने भी मेरे सत्काम कर्मों के जो फल थे वो सब न्यपतत, वो नष्ट हो गए, पांच भौतिक कहा, और मैंने इस पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। और शिला प्रभुपाद जी इसके विषय में बता रहे हैं तात्पर्य में कि नारद ने जैसे ही भौतिक शरीर को त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, और उस शरीर का जो वास्तविक गुण है वो क्या है, भौतिक आसक्ति से मुक्ति। और भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिल जाना, वो शिला प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि अगर इसी शरीर में रहते हुए भी भौतिक आसक्ति से मुक्ति हो जाती है, कृष्ण चरणों में प्रेम हो जाता है, तो वो आपका शरीर दिव्य होता है। और लेकिन यह जो शरीर है उसके अंदर एक दूसरा गुण भी है, तीन गुणों से युक्त होता है, वो क्या होता है, वो है शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति, तथा सत्काम कर्मों के फल से मुक्ति। ये जो भौतिक शरीर है वो शाश्वत नहीं है, वो समाप्त हो जाने वाला है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु आनी ही है, अनिवार्य है। और वो भौतिक गुणों से युक्त होता है ना, जैसे सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में गिरा हुआ होता है, और सत्काम कर्मों के उसे फल भुगतने पड़ते हैं। लेकिन जो शाश्वत शरीर होता है, हमारा आध्यात्मिक शरीर होता है, देखो यहाँ पर है ना, ये नारद मुनि बता रहे हैं शुद्धम भागवतीम तनु, यानी कि हमारा एक वास्तविक अस्तित्व है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि यह शरीर त्याग करने के बाद आपको शरीर नहीं प्राप्त होता है, है ना, फिर यहाँ पर तनुम क्यों लिखा हुआ है, अगर शरीर नहीं होता तो फिर मतलब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता, खाली आत्मा रह जाती। नहीं, आत्मा का अपना एक असली शरीर भी है, ये बात को हमें समझना होगा। और उस जो भागवतीम तनुम है, जो वास्तविक शरीर है ना, उस शरीर के द्वारा वो आत्मा संतुष्ट होती है। ये भौतिक शरीर तो इस संसार में हमें मिलता है, लेकिन हमारा आध्यात्मिक जगत में एक अभी शरीर है, वो क्या है, वो अभी सुप्त अवस्था में है। जब जीव भौतिक आसक्ति से बिल्कुल मुक्त हो जाता है और फिर इस पांच ये जो पांच भौतिक शरीर को त्याग करता है, तो फिर वो उस भागवतीम तनुम को प्राप्त करता है और उस तन के द्वारा वो भगवान के सानिध्य को प्राप्त करता है और फिर वो आनंदित होता है। वह वास्तविक शरीर प्राप्त करना जो है वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो हम सब प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में हमें शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो और हम यह शरीर को त्याग करने के बाद अपने वास्तविक शरीर को प्राप्त करें और कृष्ण का सानिध्य, कृष्ण के साथ प्रेम करने के योग्य बने। यही इसी से हम संतुष्ट हो सकते हैं, इसी से हमारी आत्मा संतुष्ट हो सकती है। और कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को अच्छे से कर सकूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।